शरीरं यदवाप्नोति यच्चापुत्कामति ईश्वरः ग्रहीष्वेतान् संयाति वायुरगन्धानि वाशयात् शरीरं यदवाप्नोति यच्चापुत्क्रामतम् ईश्वरः ग्रहीष्वेतान् संयाति वायुरगन्धानि वाशयात् शरीरम यत शरीरम आपनोति अब वो जो शरीर को प्राप्त करता है यच्च अति उत्क्राम उत्क्रामति और जिस शरीर का उत्क्रमण करता है छोड़ता है वो ईश्वरा वो जीव ग्रहित त्वितान संयाति वो जीव इनको लेकर के चलता है। जब जीव एक शरीर को छोड़ता है दूसरे शरीर को प्राप्त करता है तो क्या करता है जीव ग्रहित्वा एतानी एतानी बहुवचन में हुआ और क्या वो अपने पांच ज्ञानेन्द्रियों को मन को इन सबको लेकर के प्रकृति को इनको लेकर के ग्रहित्वा संयाति संयातवन जाता है चल देता है। कैसे जाता है जीव इन सबको लेकर के वायुर गंधानि वाशयात जैसे वायु गंध लिए जा रहा हो तो बड़ा सुंदर दृष्टांत हुआ। वायु एक स्थान से दूसरे स्थान वायु जाती है लेकिन दिखाई देता है वायु चल रही है आई जो देखो वायु जा रही है वो वायु जा रही है ऐसे कहीं दिखाई पड़ जाएगा लेकिन वायु जा रही है। ऐसे जीव भी इसी प्रकार वायु की तरह से जा रहा एक शरीर छोड़ा दूसरे शरीर में ज्यादा दिखाई नहीं देता। और फिर बोले कि जीव के साथ जैसे वायु जाती है वायु के साथ गंध जाएगी सुगंध हो दुर्गंध हो वो भी उसके साथ जाएगी। इसी प्रकार जब जीव जाता है तो उसके साथ में सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये भी जाते हैं और कारण शरीर के उसके पापों भी साथ जाते हैं। जब जीव जाता है अपने पाप की गठरी लिए हुए यात्रा करता है तो मानो दुर्गंध लिए जा रहा है वही जीव जब पुण्य लेकर के चलता है तो मानो सुगंध लिए जा रहा है। इसलिए भगवान ने गंध कह दिया सुगंध नहीं कहा दुर्गंध नहीं कहा गंध कह दिया। वायु गंधान वाशयात वो गंध को लेकर के जैसे वायु चल रहा हो ऐसी चल रहा ऐसे जीव भी अपने जो उसने शुभाशुभ करने की प्रकृति ऐसी उसकी है उस प्रकृति को लिए जा रहा है। न वायु दिखाई दे न वायु की गंध दिखाई दे लेकिन जानी तो जाती है। हम सब जानते हैं कि वायु है ही है ये भी जानते हैं कि वायु चलती है ये भी जानते हैं कि जो गंध है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाती है वायु के ही द्वारा जाती है बिना वायु के गंध थोड़ी जाएगी जिधर की तरफ वायु जाती है उसी की तरफ गंध चली जाती है। तो मैं इसी प्रकार से ये बता दिया कि देखो ये जीव को एक वायु की तरह से समझो लेकिन ये उदाहरण है ऐसा मत समझ लो कि जीव भी एक हवा है। लोग कुछ लोग ऐसे समझ लेते हैं क्या है ये तो एक हवा है शरीर से हवा निकल गई बस प्राण निकल गए हवा निकल गई जीव निकल गया ऐसे हवा हवा करके मानते हैं तो कहते हैं हवा हवा नहीं है ये जीव 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 तो एक चेतन सत्ता है और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये हैं इनको लेकर के जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अब भगवान ने ये नहीं बताया कि देखो ये जीव जो है वो चैतन्य का प्रतिबिंब है कि चैतन्य का अवच्छेद है बाकी ये तो आचार्यों का काम है पर जहां देखें जिसको जिस प्रकार से समझाना उसको समझा दे बस मुख्य बात ये है कि चैतन्य है और उपाधि है बस वो चैतन्य उपाधि जो है वो हो उपाधि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। अब जब अवच्छेदवाद को अगर हम माने कि जैसे कि आकाश और घट है हा? तो अगर घट में जल भरा हुआ है या घट में कोई सुगंधित पदार्थ भरा हुआ है और उस घट को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाओ तो क्या उसके साथ आकाश भी जाता है हा? आकाश तो सब जगह विद्यमान है वो आकाश यहाँ पर भी है घटा अगर थोड़ी दूर तक घट आ गया तो वहां का आकाश वहां विद्यमान है और घट आगे चला तो वहां का आकाश वहां विद्यमान है। इसी प्रकार से चैतन्य अनंत होकर के सर्वत्र विद्यमान है सूक्ष्म शरीर कारण शरीर जब चले तो उनके चलने से ऐसा लगता है कि चैतन्य भी उनके साथ चला लेकिन वो चलता चलाता नहीं है केवल सूक्ष्म शरीर कारण शरीर चलते हैं और जहां होते हैं वहीं पर वो चैतन्य उनको प्रकाशित करके चेतनानुभूति करा देता है। और इस प्रकार से वो सुखी शरीर और कारण शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाते हैं। अगर प्रतिबिंबवाद के अनुसार देखो तो परमात्मा का प्रतिबिंब सूक्ष्म शरीर में कारण बाल्टी में डालो तो जब पानी दूसरी बाल्टी में जाएगा तो वो प्रतिबिंब भी आपको दूसरी बाल्टी में जाकर दिखाई देने लगे, मानव प्रतिबिंब भी वहां चला। दरअसल में अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखो तो न प्रतिबिंब चलता है और न वो आकाश चलता है, ये दोनों में से चलते कोई नहीं है, लेकिन चलते हुए से भाषित होते हैं। ऐसा जो है बताने के लिए ऐसे बता देते हैं कि जा रहे हैं मानो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, बस इस तरह से बताते हैं कि देखो ये है एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जीव जाता है। तो जीव की एक विशेषता ये भी है कि जीव एक ही शरीर में सदा नहीं रहता, एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में क्यों जाता है, एक शरीर क्यों छोड़ देता है। अब यह है कि जीव को के का जैसा प्रारब्ध है उसके जैसे कर्म है और उन कर्मों का फल भोगना है, तो जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए उपयुक्त शरीर प्राप्त करता है। जिस शरीर को प्राप्त करके जीव अपने प्रारब्ध का भोग कर सके वह उसी शरीर को ग्रहण कर लेता है। ऐसे समझ लो कि देखो एक शरीर को छोड़ करके जीव चला, जब चला तो इस जगत में तमाम प्राणी हैं और तमाम प्राणियों के उदर में गर्भ विद्यमान है, हाँ? अब वो जीव जब सेलेक्ट करता है हम किस प्राणी में प्रवेश करें, कैसे सेलेक्ट करता है, वो देखता है किस शरीर में जाकर के हमारी ये वासनाएं तृप्त हो सकती हैं, उसी शरीर में प्रविष्ट करें। मनुष्य शरीर में भी प्रवेश कर सकता है, मनुष्य के इतर शरीरों में प्रवेश कर सकता है। हमने सुना स्वयं एक व्यक्ति कहता था अरे मनुष्य शरीर क्या, मनुष्य शरीर से कुत्ता बढ़िया, कुत्ता बहुत अच्छा होता। हालांकि लोग कहते क्या बड़ा खाया, अरे बिल्कुल कुत्ता आदमी है, आदमी को घृणा करते हैं कुत्ता बता दिए तो उसके साथ गाली हो गई आदमी, लेकिन वो कहता था अपने आप कि मनुष्य शरीर क्या है, इसमें तो बड़ी परेशानियां हैं, कुत्ता देखो कितना अच्छा है, अपने जो जहां रहता है तो मालिक अपने आप ही उसको रोटी खिलाता है और अपने मस्त घुमा करता है, सोता रहता है, क्या करना पड़ता है, कौन चिंता उसे, हाँ कभी खबर कहीं हुई तो भूख भाग दिया, नहीं तो बाकी अपने सोता रहता है, देखो कितना अच्छा कुत्ते के जीवन है। उसे कुत्ते के जीवन बड़ा अच्छा लगा। अब जिसको कुत्ते का जीवन अच्छा लगेगा वो जीव अगर मन सही छोड़ करके जाएगा तो कहां जाएगा, खम खा जाएगा वहीं, कोई जबरदस्ती थोड़े ले जाएगा उसको, वह तो अपने कर्मानुसार अपने स्वभाव अपने रुचि के अनुसार अपने आप वहां पहुंच जाएगा। ऐसे ही ये तो एक बात आपको बताई, किसी उदाहरण से आप सर्वत्र समझ लो, कोई के शरीर में क्यों पहुंचा, मनुष्य शरीर में भी क्यों पहुंचा, उसको वही अच्छा लगा तो उसमें पहुंच गया, और अच्छा क्यों लगा, अब हर बात का क्यों करो कि भाई अच्छा क्यों लगा, अच्छा इसलिए कि सत्वगुण था रजोगुण था तमोगुण था, जैसा अर्जित हो गया उसे अनुसार अच्छा भी लगने लगा। सत्वगुणी व्यक्ति को एक बात अच्छी लगेगी, रजोगुण कुछ और अच्छा लगेगा, तमोगुण कुछ और अच्छा लगेगा, तो जिसकी जैसी प्रकृति वैसा उसे अच्छा लगेगा। तो ये कहना चाहिए कि अगर कोई जीव को किसी योनि में जाता है, किसी शरीर में जाता है, किसी लोक में जाता है तो कौन ले जाता है, तो बोले कि उसी की प्रकृति ले जाती है, उसी का स्वभाव ले जाता है। अगर आपको यहां से ले जाकर के गाड़ी में बैठा कर कानपुर में छोड़ दिया जाए शहर में तो आप कहां जा रहे हैं, अब आपकी प्रकृति आपको खड़ोचने लगेगी है कि चलो किसी होटल चलते चाय पाती है, कहीं चलो बाजार में कपड़े की दुकान में चलो थोड़ा वहां से कपड़ा ले लेंगे, कहीं सोचने लगे कहीं चलो यहाँ से ये ले लेंगे कहीं वो ले लेंगे कहीं कुछ कहीं कुछ। अब भाई जिसको जिसका जिस प्रकार की प्रकृति होगी उसी तरह की वस्तु याद आएगी और उसी तरह की दुकान पर उसी स्थान पर बस निकल दो। ऐसा थोड़े सब जने एक जगह उतर सब जगह एक जगह पहुंच जाएंगे, वो अपने अपने रुचि के अनुसार अपने अपने चल देंगे अपनी अपनी दिशा में। बस इसी प्रकार से जो है ये जीव का भी है, जीव का भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना प्रकृत्या है, अपने स्वभाव के अनुसार है। वैसे बता तो ये दिया जाता है कि देखो भाई जब जीव शरीर छोड़ता है तो फिर यमराज आते हैं और यमराज उस जीव को पकड़ते हैं, बांधते हैं और शरीर में से निकालते हैं और घसीटते हुए ले जाते हैं। जीव जाना नहीं चाहता लेकिन यमराज घसीट करके ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? अब यमराज को मालूम है कि इस जीव के संस्कार किस प्रकार के हैं, इसकी वासनाएं किस प्रकार की हैं, और जैसी उसकी वासनाएं होती है उसी प्रकार के शरीर में उसे यमराज वहां पहुंचा देता है। और अगर कहीं शरीर छूटने लगा किसी व्यक्ति का और यमराज नहीं आए तो फिर भगवान के दूत आते हैं, विष्णु भगवान के दूत पीतांबर धारण किए हुए, चार हजार धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद में लिए हुए, मुकुट धारण किए हुए, जैसे भगवान जहन तदाकर तैसे ही उड़ के उसी प्रकार के आते हैं। पर उस जीव को कहते हैं कि आइए आइए चलिए हम आपको लेने के लिए आए हैं। जीव पूछता कहाँ ले जाओगे? कहीं आपको भगवान ने बुलाया है, वहाँ बड़ा सुंदर स्थान है, आपको बड़ा आनंद प्राप्त होगा, चलो आपको चलो। तो बांध के नहीं ले जाते, उनको फिर ले जाते हैं आग्रह करके और इनको स्मरण दिला करके बहुत सुंदर स्थान सुंदर, ठीक है तो फिर हम चले तो हम तो कितनी दूर है हम चल पाएंगे नहीं, अरे तुम्हारे लिए हम रख लाए चलो बैठो रख कर हाँ। तो उनको रख बैठाल करके तो वो दूध उनको ले जाते हैं वैकुंठ धाम में ले जाते हैं। वैकुंठ धाम में फिर वो बहुत दिनों तक रहता है, अपने पुण्यों का फल भोगता है। तो ये तो दो प्रकार के तो इस प्रकार के हो गए ले जाने वाले। ये पौराणिक भाषा है, यमराज आते हैं भगवान के दूत आते हैं और फिर उनको इस प्रकार से ले जाते हैं। तीसरे प्रकार की बात क्या है कि वे लोग जो अपने आत्मभाव में स्थित हैं परमात्मभाव में स्थित, उनका शरीर छूटने लगा तो न यमराज आवे और न भगवान के दूत आवे, उनको क्या होता है कि उनको कहीं जाना ही नहीं तो आवे कौन, जहाँ हैं वो पहले ही सर्वव्यापी अनंत चैतन्य परमात्मा में स्थित हैं। ताम्र धारण किए हुए, चार हजार धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद में लिए हुए, मुकुट धारण किए हुए, जैसे भगवान जहन तदाकर तैसे ही उड़ के उसी प्रकार के आते हैं। पर उस जीव को कहते हैं कि आइए आइए चलिए हम आपको लेने के लिए आए हैं। जीव पूछता कहाँ ले जाओगे? कहीं आपको भगवान ने बुलाया है, वहाँ बड़ा सुंदर स्थान है, आपको बड़ा आनंद प्राप्त होगा, चलो आपको चलो। तो बांध के नहीं ले जाते, उनको फिर ले जाते हैं आग्रह करके और इनको स्मरण दिला करके बहुत सुंदर स्थान सुंदर, ठीक है तो फिर हम चले तो हम तो कितनी दूर है हम चल पाएंगे नहीं, अरे तुम्हारे लिए हम रख लाए चलो बैठो रख कर हाँ। तो उनको रख बैठाल करके तो वो दूत उनको ले जाते हैं वैकुंठ धाम में ले जाते हैं। वैकुंठ धाम में फिर वो बहुत दिनों तक रहता है, अपने पुण्यों का फल भोगता है। तो ये तो दो प्रकार के तो इस प्रकार के हो गए ले जाने वाले। ये पौराणिक भाषा है, यमराज आते हैं भगवान के दूत आते हैं और फिर उनको इस प्रकार से ले जाते हैं। तीसरे प्रकार की बात क्या है कि वे लोग जो अपने आत्मभाव में स्थित हैं परमात्मभाव में स्थित, उनका शरीर छूटने लगा तो न यमराज आवे और न भगवान के दूत आवे, उनको क्या होता है कि उनको कहीं जाना ही नहीं तो आवे कौन, जहाँ हैं वो पहले ही सर्वव्यापी अनंत चैतन्य परमात्मा में स्थित हैं। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ न हो तहाँ जाएं, जब सब जगह विद्यमान है तो जाएं कहाँ, और उनके अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं, तो कौन आवे कौन उनको ले जाए। इसलिए बस वो फिर उनका उत्क्रमण नहीं होता, कहीं जाना आना नहीं होता। यहाँ जब उत्क्रामन की शब्द प्रयोग किया है यहाँ पर, यच्चाप उत्क्रामन मति ईश्वरहा, इस प्रकार जीव शरीर का उत्क्रमण करता है छोड़ता है, तो उन लोगों का वर्णन है जो शुभाशुभ कर्म करने वाले हैं, जिनके साथ प्रकृति की उपाधि लगी हुई है, सूक्ष्म शरीर की उपाधि लगी हुई है, जो अज्ञान में पड़े हुए हैं वही एक शरीर छोड़कर के दूसरे शरीर में जाते हैं, अन्यथा जो आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति हैं वो अपने उसी परमात्म भाव में रहते हैं। शरीर उनका ऐसे छूट जाता है जैसे पीपल के वृक्ष का सूखा पत्ता झड़ जाता है। जैसे वृक्ष के लिए एक सूखा पत्ता कोई महत्व नहीं रखता, हवा लगी झड़ गया, अब वृक्ष अपना लहरा रहा खड़ा हुआ है मस्त। इसी प्रकार ब्रह्म भाव में स्थित रहने वाला अपने ब्रह्म भाव में स्थित है और शरीर एक सूखे के पत्ते की तरह झर गया तो झर गया, वो अपने यथास्थान उसी आनंद में उसी प्रकार के स्थित है। उसके शरीर के छूटने में छूटने का कोई महत्व नहीं, जब तक बना है तब तक बना है, छूट गया तब छूट गया। इस प्रकार से यह है, ये समझना चाहिए कि यह जीव क्या है। बात यह है कि जब तक व्यक्ति अपने जीव भाव को नहीं समझता तब तक ब्रह्म भाव को नहीं प्राप्त कर सकता। देह भाव में रखने वाले व्यक्तियों के लिए तुलसीदास जी ने एक स्थान में कह भी दिया कि देखो जो लोग देहाभिमानी हैं उनके लिए ब्रह्म ज्ञान अगम्य है। देहाभिमानी जो अपने आप को समझते हैं शरीर ये स्थूल शरीर में हूं, अरे जो ये समझता कि मैं स्थूल शरीर हूं उनको तो पहले यही समझना चाहिए कि स्थूल शरीर में रहने वाला जीव मैं ये शरीर नहीं, इनके लिए यही बहुत बड़ा ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान तो बहुत दूर की बात है उनको। जिनको यही नहीं समझ में आता कि शरीर में बास करने वाला जीव वो मैं हूं, वे वाला ब्रह्म ज्ञान उनको कहां प्राप्त होने वाला, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति कहां होने वाली।